पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र ने घोषणा की कि वो रूही से शादी करेगा। रूही और दिशा जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रुद्र रूही का हाथ पकड़ लेता है। दिशा गुस्से में रुद्र से रूही का हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रुद्र रूही को अपनी ओर खींचता है और घोषणा करता है कि वो रूही से शादी करेगा। अब आगे दादाजी, प्लीज आप इन्हें रोकिए, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। आपकी बात को यहाँ कोई नहीं टालता। प्लीज दादाजी, इन्हें कहिए ना कि मुझे छोड़ दें। दादाजी रूही की आंखों में एक उम्मीद को देख सकते थे जो रूही उनसे लगाए बैठी हुई थी, पर वे भी अपनी नज़रें झुका लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बार वे कुछ भी क्यों ना कर ले, पर रुद्र उनकी बात नहीं मानेगा क्योंकि वे भी रुद्र की आंखों में वही पागलपन और जुनून को देख सकते थे जो कभी उनकी आंखों में भी अपनी प्रीत के लिए हुआ करता था। वहीं रूही जब दादाजी को नज़रें झुकाते हुए देखती है तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वहीं रुद्र रूही को अपनी गोद में ही मंडप पर ला उसे अपने बगल में बैठाते हुए पंडित जी से अपनी कोल्ड आवाज में बोला, पंडित शादी शुरू करो। पंडित जो खुद ये सब देख काफी ज्यादा डर गया था, वे रुद्र की कोल्ड आवाज सुन अपना सर हाँ में हिला जल्दी जल्दी शादी के मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं रूही रुद्र से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे शादी नहीं करनी, छोड़ो मेरा हाथ। इतना बोल वे रुद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगती है और उसके हाथ पर मारने लगती है, पर रुद्र को कहाँ रूही के नाजुक रुई जैसे हाथों से चोट लगने वाली थी, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मसाज दे रहा हो, इसीलिए वे कुछ नहीं कहता और वैसे ही बैठा रहता है। तभी पंडित जी कहते हैं, आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर रुद्र रूही का हाथ पकड़ उसे खड़ा करने के साथ साथ खुद भी खड़ा हो जाता है, जिसे देख कुछ बॉडीगार्ड्स वरमाला की थाल लिए खड़े हो जाते हैं, जिसे देख रुद्र वरमाला ले रूही के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा उस वरमाला को खुद ही पहन लेता है। उसके बाद एक वरमाला खुद ले अपने एक हाथ से ही रूही को वो वरमाला पहना देता है और वापस रूही को लेकर मंडप में बैठ जाता है, जिसे देख पंडित फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं ये सब देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वे वहां से चला जाता है। भले ही वो रूही से प्यार ना करता हो और रूही को लेकर बहुत सीरियस भी नहीं था, लेकिन हाँ, रूही उसे अच्छी लगती थी, मगर उसके भी पहले उसकी दोस्त थी। अगर वो रूही को शादी के लिए प्रपोज करता और रूही मना कर देती तो भी उसे उतना दुख नहीं होता, पर अपने भाई को रूही से इस तरह जबरदस्ती शादी करता हुआ देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रूही उसे हंसी मुस्कुराती हुई पसंद थी, ना कि रोती हुई, पर वे ये भी जानता था कि वे कुछ भी कर ले पर अपने भाई को नहीं रोक सकता था, इसीलिए वे वहां से चला जाता है। वहीं परी भी अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है और अपनी मॉम के पास जाकर कहती है, मॉम प्लीज कुछ कीजिए ना, भाई इस तरह जबरदस्ती रूही से शादी नहीं कर सकते, देखिए ना वे कितना रो रही है, उसे भी हक है कि वे अपने पसंद के लड़के से शादी कर सके। परी की बात सुनकर सुमन कुछ नहीं कहती। वहीं धीरज परी के सर को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा तुम जानती हो ना अपने भाई को, वे अब किसी की नहीं सुनेगा, अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। धीरज की बात पर परी कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंसू भरी आंखों से रूही को देखने लगती है। वहीं प्रीता की भी आंखें नम थी, वे रूही की तकलीफ को समझ सकती थी क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था। वहीं रणवीर की नज़र जब प्रीता की नम आंखों पर पड़ती है तो उसके भाव कठोर हो जाते हैं और वे प्रीता से थोड़ा गुस्से में बोला, प्रीत तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है रुद्र का तरीका गलत है रूही को पाने का, मगर तुम देखना बाद में दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे जिस तरह तुम मेरे साथ हो। रणवीर जी की बात सुनकर प्रीता अपने मन में बोली, हाँ मुझे ही मालूम है मैंने आप जैसे पागल इंसान को कैसे झेला। इतना सोच वे फिर से शादी देखने लगती है। वहीं दिशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वे लेडी बॉडीगार्ड दिशा के हाथों को मजबूती से पकड़ी हुई थी, जिसके दिशा चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, इसीलिए वे अपनी आस भरी नजरों से देवांश को ढूंढने लगती है, मगर अफसोस उसे देवांश कहीं नहीं दिखता क्योंकि देवांश को पहले ही पता था कि दिशा उसकी मदद जरूर मांगेगी और वे दिशा को मना नहीं करना चाहता था, इसीलिए वे मौका देखते ही यहाँ से निकल जाता है। वहीं दिशा को जब देवांश कहीं भी नहीं मिलता तो वे उन लेडी बॉडीगार्ड्स को देखते हुए बोली, देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम खुद ही एक लड़की हो, तुम खुद ही सोचो अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती शादी करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। दिशा की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स कुछ भी नहीं बोलती, उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही ना हो, जिसे देख दिशा अब कुछ भी नहीं कहती, बस अपनी आंसू भरी नजरों से रूही को देखने लगती है। वहीं पंडित रुद्र को देखते हुए कहता है, यजमान गठबंधन के लिए इनके परिवार में से किसी को बुला लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कहता और अमन को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ अमन आ गया। रुद्र और रूही का गठबंधन कर देता है, जिसे देख पंडित जी उन दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं, जिसे सुन रुद्र खड़ा हो जाता है। मगर रूही वैसे ही बैठी रो रही थी, जिसे देख रुद्र बिना कुछ कहे रूही को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लिए फेरे लेने लगता है। वहीं रूही जब रुद्र को यूं गोद में उठा फेरे लेते हुए देखती है तो उसके सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे जाने दो, मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी, तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? रूही की बात सुनकर रुद्र बोला, रूह शांत हो जाओ, अगर अभी से इतना रोकर और चिल्लाकर अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दोगी तो फिर हमारी सुहागरात में क्या करोगी? रुद्र की बात सुनकर रूही की हालत खराब हो जाती है। सुहागरात, वे कभी सपने में भी इस आदमी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने का नहीं सोच सकती थी, सुहागरात मनाना तो दूर की बात है। रूही अपनी घबराई आवाज में बोली, अपनी बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे। रुद्र रूही की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस आखिरी फेरा लेने लगता है, जिसे देख रूही रुद्र के हाथ पर अपने दांतों से जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से बाइट करती है, पर फिर भी रुद्र उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपनी रूह के छोटे छोटे चूहे जैसे दांत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी के साथ आखिरी फेरा भी खत्म होता है और पंडित जी उन्हें वापस बैठने को बोलते हैं, जिसे सुन रुद्र रूही का हाथ पकड़ वापस बैठ जाता है। जिसे देख पंडित जी रुद्र की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र का थाल आगे करते हुए बोले,
अब आप बिटिया के गले में मंगलसूत्र डाल फिर उनकी मांग में सिंदूर भर दीजिए।